سوچے سوچ نہ ہوئی جے سوچی لکھوار، چپے چپ نہ ہوئی جے لائی را لیتار، پکھیاں پکھ نہ اتری جے بنا پڑیاں پار، سہ سیاں پا لکھ ہوئے تاں ایک نہ چلے نار، کس سچیا را ہوئی ہے کس کوڑے ٹوٹے پال، حکم رجائی چلنا نانک لکھیا نال، ہنی پاپی آخر نائی کر کر کرنا لکھ لے جائے، آپے بیج آپے کھاؤ نانک حکمیا ہو جاؤ.
اپنے گناہ دی معافی لئی ارداس بینتی کرتا ہے، سنگت دی سنگتھا ہے بخشن دی، بخشن دی کرپالتا کرو، سنگت دے بخشے نو گرو صاحب بھی بخش دیں گے. آج دے اس روحانی سنسنگ لئی گرو صاحبہ نے جو شبد بخشش کیتا ہے وہ ہے چترائی. اس جگت دے وچ چتر کون ہے اور کس طریقے دی چترائی دے نال اس جگت نو چلا رہا ہے، گرو صاحب اس نو سپشٹ کرن گے. یہ جو رچنا رچی گئی ہے بڑی گہری، بڑی چھل اور بڑی وشال ہے. بنا چتر ہوئے اس چترائی چو نکلنا بہت مشکل ہے. سوچے سوچ نہ ہوئی جے سوچے لکھوار، چپے چپ نہ ہوئی جے لے رہا لفتار، پکھیا پکھ نہ اتری جے بنا پوریاں پار، سہ سیان پہ لکھ ہوئے تا اک نہ چلے نال، کیو سچیاریا ہوئیے کیو کوڑے ٹوٹے پال، حکم رجائی چلنا نانک لکھیا نال. اس تک دے وچ گرو صاحباں نے اس جگت دے وچ چل رہے سارے کرم کانڈ اور جتنیاں بھی ودھیاں نے، جتنیاں بھی ریتاں چل رہی ہیں اس پرماتما نو پراپت کرن واسطے گرو صاحباں نے سپشٹ کیتا ہے کہ ایسی ساریاں چترائیاں استعمال کرن دے باوجود اے جیواتما اس جگت تو پار نہیں جا سکتی. اے جگت دی رچنا کس طریقے دے نال رچی گئی ہے اور کس چترائی دے نال اس نو چلایا گیا ہے، گرو صاحب اس نو سپشٹ کردے ہیں. اے رچنا جس نے رچی ہے وہ انامی الکھ اگم اپنی تم دے وچ مست ہے، اپنی موج دے وچ اس لئے اس نے ہنکارا پریا، ایک آواز ہوئی اس آواز نو اسی اوم دی سنگیا دیندے ہاں، اس دے وچ ایک پرکاش ہے. اس آواز اور پرکاش نے اس سارے جگت دی رچنا کیتی ہے. سب تو پہلا ایک رچنا رچی گئی جس نو اسی اکال پورک کہندے ہاں. اے اکال پورک دی جو رچنا ہے اس انامی تو ہے اور اس اکال پرخ کے روم دے ایک کرن تو اکال پرش دی رچنا ہے. کال پرش دی رچنا تو بعد یعنی کہ نقل دی وی نقل ہے، بہت ساری سمرتھا دے کر کے اس نو یہ جتنے لوگ رچے گئے ہیں اس دے ادھین کیتے گئے ہیں اور انہاں لوکاں نو چلان واسطے کال پرش نے اس انامی تو کچھ وار بھی لئے ہیں. وہ کی وار ہیں؟ پہلا وار تو یہ ہے یہ جیواتما نو جس بھی جامے دے اندر، جس بھی پنجرے دے اندر رکھاں وہ اتھے پرسن رہے. دوسرا اس نو اپنے پچھلے کرما دا گیان نہ رہے. تیسرا وہ انامی دی جو سمرتھا ہے وہ اس جگت دے وچ کسے روپ دے وچ بھی آئے یعنی کہ او پرگٹ نہ ہوئے، اس نو اسی دیکھ نہ سکیے، اے جیواتما چیت نہ سکے. اے تین وار لے کر کے کال پرش جو ہے اے سارے جگت نو چلا رہا ہے. اس دی کرن تو جتنی رچنا رچی گئی ہے او دے وچ انگنت برمنڈ ہیں، کوئی ایک دو چار نہیں، اے پرتھوی اے دھرتی آکاش کیتے اند چند سور کیتے منڈل دیس इतने देश ने, इतने चंद सूरज ने, इतनी वड्डी विशाल रचना है कि यह मन बुद्धि की सीमा दे विच रह करके असी उस नूं कदी जान ही नहीं सकते। उस अकाल पुरुष तो बाद काल पुरुष ने इस रचना नूं रचाण लई ए जो वर ले ने, इले वरा दे नाल उसने नियम बनाए ने। वह नियम की ने? सब तो पहला तो यह है कि इस रचना दे विच जीवात्मा नूं रोकण वास्ते कोई पिंजरा दिता जांदा है, उस करके उसने 84 लाख पिंजरे बनाए ने। बड़े ही खूबसूरत उत्तम भोगी जूना और निचले किस्म दियां जूना बनाईयां ने। और उसके बाद उसने एक नियम होर बनाया है, वह है कर्म का नियम, यानी कि इस जीवात्मा नूं किसी भी पिंजरे दे विच रखा जाए उसनू कुछ ना कुछ कर्म करना पेगा। बिना कर्म दे ए पिंजरा जो है स्थिर नहीं रह सकता, यानी कि अगर जीवात्मा इस पिंजरे दे विच भी रहना चाहती है तो उसनू सूक्ष्म मानसिक या स्थूल रूप दे विच कोई ना कोई क्रिया, कोई ना कोई कर्म करना पेगा। उस तो उत्ते एक होर नियम है, यानी कि जो भी रचना इस दृष्टि दे विच आएगी उसने खत्म हो जाना है, यानी कि जो भी पिंजरा उसनू दिता जाता है एक निश्चित सीमा तक दिता जाता है, उस सीमा दे बाद वह पिंजरा उसके कोलों वापस ले लिया जाता है। यानी कि जदों भी यह जीवात्मा जिस भी पिंजरे दे विच आंदी है हर पल हर कड़ी मौत दा नगाड़ा उसके सिर ते वजन लग जाता है, और जो जो यह समय बीतता जाता है उसकी उम्र घटती जाती है। असी खुशियां मनांदे हां, इस जगत नूं भोगण च लगे हां, विषय विकारां दे अग दे विच लगे हां, सानू चेता ही नहीं, होश ही नहीं कि किस तरीके दे नाल सानू इत्थे कैद कर लिया गया है और इस जीवात्मा दा उद्धार किस तरीके दे नाल हो सकता है। उसका इको ही रस्ता है कि वह अनामी जो है अकाल पुरुष के जरिए इस जगत दे विच किस तरीके दे नाल व्याप्त हो रहा है, किस तरीके दे नाल विचर रहा है, जिस तरीके दे नाल उसने रचना रची है उस तरीके दे नाल ही असी इस रचनाकार दी इस रचना चो निकल करके उस रचनाकार दे नाल मिल सकते हैं, और ये मिलन नूं ही सच्ची मुक्ति किया गया है। और जितने भी कर्म कांड जगत दे विच मौजूद ने वो विचार करके देखो किस तरीके दे नाल इस जीवात्मा दा उद्धार कर सकते ने, इस जीवात्मा चाह करके भी इस चतराई चो निकल नहीं सकती। इस करके संत सतगुरु जड़े आंदे ने वो अकाल पुरख की समर्था ताकत अवतार दे रूप दे विच आंदे ने, वो सारी ताकत उन्हां दे विच मौजूद होंदी है, यानी कि किस तरीके दे नाल रचना रची गई है ये आवाज और प्रकाश दे जरिए, यानी हक दी आवाज परमात्मा दी आवाज, वो सच यानी कि परमात्मा, वो सच परमात्मा किस तरीके दे नाल आवाज और प्रकाश दे जरिए जड़ और चेतन नूं आधार दे रहा है। जो जो ये आवाज जड़ी है मंडल दर मंडल थल्ले उतरदी है, इस तरह एक सूरज है उस दियां किरणां अलग अलग मंडलां च होकर के निकल दियां ने, सानू कोई नजर नहीं आंदा उस दे विच कितने रंग ने, पर अगर उस नूं इस प्रिजम दे विचों पास करिए तो असीं पर्दे विच बहुत सारे रंग देख सकते हैं अलग अलग किस्म दे, पर इन्हां अखां दे नाल सानू नजर नहीं आंदा। उसे तरीके दे नाल ए जो गुण है वह अथाह समुंदर उसकी बूंद वह अथाह गुणा का स्वामी जो है उसका एक गुण है आवाज और प्रकाश, ये किस तरीके दे नाल ए सारे जगत दे विच व्याप्त हो रहा है इन्हां अखां दे नाल नजर नहीं आंदा। यही चतुराई है, यही परम है, यानी कि काल ने एक पर्दा मन और माया दा, मन कौन है एक एक एजेंट है इसका काल का, उन्हें एजेंट नूं अपने हर जीवात्मा दे नाल लगा रखा है, और वह बड़ी चतुराई और खूबसूरती दे नाल अपना काम कर रहा है। की काम है? जीवात्मा नूं परमा करके रखना, यानी कि उस नूं खबर ना होए कि वह किस देश की वासी है, किधरों आई है, किधर फसा ली गई है, और किस तरीके दे नाल वो वापस अपने घर नूं जा सकती है। इस जगत दे जितना भी काम करना है मन दी अपनी कोई ताकत नहीं, वो भी सतगुरु कोल ताकत लै रहा है, वो सतगुरु दी ताकत इस आत्मा दे विच भरपूर मात्रा च मौजूद है, और ये मन जो है इस आत्मा दे कोलो ताकत लैंदा है। आत्मा दी ताकत की है? ख्याल, यानी कि ख्याल नूं अपने अंदर लैंदा है और नौ द्वारा चो निकल करके ये पूरे ब्रह्मांड दे विच ये सारी ताकत नूं फैला दिंदा है, अपने घर का भी काम करता है और उस नूं फैलाण का भी काम करता है। फैलांदा इस करके है कि ये सिमट ना सके, अगर ये ताकत ख्याल सिमट गया दसवें द्वार पहुंच गई तो जीवात्मा नूं ओ जो परमात्मा का गुण है आवाज और प्रकाश का उस नूं दीदार हो जाएगा, उस नूं आवाज सुनाई देन लग जाएगी। अगर उस नूं आवाज सुनाई दे गई ये दीदार हो गया तो ये जीवात्मा अपने निरत और सुरत दे जरिए उस प्रकाश नूं देखदी होई और उस आवाज नूं सुनदी होई उसी डायरेक्शन दे विच पौड़ी दर पौड़ी चलदे अपने घर पहुंच जाएगी। अगर ये सारिया जीवात्मा इस लोक तो निकल करके अपने घर पहुंच गईयां ते विचार करके देखो इस जगत दी खूबसूरती की रह जाएगी, चारों पासे जड़ ही जड़ रह जाएगा। इस जड़ दी क्या कीमत है? ओ काल ने इस जड़ और चेतन नूं कायम रखण वास्ते इन्हां दोनों दा जो मिश्रण कीता है ये 84 लाख पिंजरिया दा बड़ी खूबसूरती और चतुराई दे नाल जीवात्मा नूं परमा करके इस जगत दे विच रोक करके रख्या है। संत सतगुरु आंदे ने सिर्फ इसी वास्ते आंदे ने चेतान वास्ते आंदे ने होशियार करन वास्ते आंदे ने कि तुसी जागो अपने घर की खबर लो ये घर तुहाडा नहीं है ये जगह तुहाडी नहीं ये देश तुहाडा नहीं जिन्हां वस्तुआं नूं इस जगह दे विच असी सच्चा करके जानन लगे हां क्यों क्योंकि माया दा पर्दा है होमै दा विकार है होमै की है मेरी मैं करके इस जगत विच विचर रहे हां और जो असली मैं है परमात्मा परमात्मा दा अंश यानी कि ए आत्मा ए मैं दी अपनी खबर नहीं ए यह करके इस जगत विच फसी है यह शरीर मेरा है यह घर मेरा है ए वस्तुआं मेरिया ने ए भोग मेरे ने ए संबंध मेरे ने ए सारे सारे नाशवान ने यानी कि जिस दे नाल यह लग गया ए नाशवान है और ए जगत दे विच मैं जो है ए यह दा संग करके दुख का कारण है अगर यह नु त्याग दे तो इसकी मैं कोई दूर नहीं है वह परमात्मा किते होर नहीं मिलता विचार करके देखो उस परमात्मा का यह जो गुण है जड़ और चेतन सब दे विच है निचले जामे च भी है उतले जामे च भी है सूक्ष्म शरीर भी कारण लोकां दे विच हर जगह यह मौजूद है पर इस नु प्राप्त सिर्फ और सिर्फ मनुखे जन्म विच कीता जा सकता है इस तो विचार करके देख लो मनुखे जन्म की कितनी कीमत है उस दे नाल एक कीमत दिती गई है एक पूंजी दिती गई है वह पूंजी केड़ी है स्वासा की पूंजी इस स्वासा नु खर्च करके ए जीवात्मा ने एक पिंजरे दे विच यानी मनुखे पिंजरे दे विच जन्म दे विच आ करके उसने अपने घर का काम करना सी असी कदे भी अपने घर का काम नहीं किया असी पराए गधे बन करके बैठे हां सवेर हुंदी है तियां पुत्र जमीन जदार कारा मोटरा फैक्ट्रियां कार बंगले इन्हां दे विच ही असी सारा दिन बिता देंदे हां रात हुंदी है फिर बिस्तरे ते पे पे भी असी यही ओ ख्याल करदे हां इन्हां दे विच ही घूमदे रहिंदे हां इन्हां दे विच विचरदे हां यानी कि ओ स्वासा दी पूंजी जिहड़ी सानूं मिली सी असी 24 घंटे खराब कर दित्ते पर उस पल नू उस कड़ी नू यानी कि अपने घर दे काम दे करन नू ओ ना कड़ी आई ना कदी काम कीता ना चेते यानी सुते आए और सुते ही चले गए और किस चतुराई दे नाल काल ने ए साडे कोले पूंजी खो ली इसे तरीके दे नाल दिन दे दिन हफ्ते महीने साल बीत जांदे ने सारी उम्र लंघ जांदी है बचपन तो जवानी है जवानी तो बुढ़ापा है असी अपने घर दा काम नहीं कर सके ए काम ते कदी सत्संग जी किसे दे पूरे होए नहीं विचार करके देख लो इतिहास दे विच वड्डे वड्डे योद्धा होए ने देशां मुल्कां नू उन्हां ने लुट करके खा लिया राज खंभाल ले पर उस तो बाद जदों घर गए ने खाली हथ गए ने यानी कि रोंदे पिटदे आए और रोंदे पिटदे चले गए और दोबारा बार बार इसे जगह दे भी जम्मे और मरे ए मनुखा जन्म सानू बार बार जन्म मरण दा ए भुगतान करन वास्ते नहीं मिलिया ए सानू मिलिया है अपने घर जान वास्ते चेतन वास्ते जागण वास्ते और असी हां कि जागण दी कोशिश ही नहीं करदे संत महात्मा आंदे ने ए वाणी देंदे ने सचखंड तो वाणी दित्ती जा रही है असी इस वाणी दा क्या लाभ उठाया सानू 50 साल हो गए वाणी सुनदिया किसी नू 10-15-20 साल हो गए ने अज तक असी इस वाणी दे उपर अमली जामा नहीं पहनाया हुण विचार करके देखो ओ जो वस्तु साडे इस जगत दे विच जड़ और चेतन नू आधार दे रही है ओ कितनी तकनीकी वस्तु है कितनी विशाल और ऐसी चेतनता लेकर के आंदी है और उस चेतन वस्तु नू क्या असी जड़ वस्तुआं दी आराधना करके प्राप्त कर सकते हैं इस जगत दे विच असी परमात्मा नू प्राप्त करन लई किस तरीके दी आराधना कर रहे हैं कोई ग्रंथा पोथियां नू मथे टेक रहा दिन रात उन्हां नू रटन च लग रहा ओदे विच है की है ओदे विच परमात्मा दा हुक्म है ए रस्ता दित्ता है संतां दी शरण ही जाओ उन्हां दी शरण दे विच जा करके उन्हां दे उपदेशां दा पालन करो और अपनी हस्ती मिटा करके इस आवागमन तो मुक्ति का साधन इकट्ठा कर लो पर असी उन्हां दे कोल जांदे नहीं उन्हां दी जो वाणी है उन्हां नू मत्था टेक देंदे आ जां पढ़ी जांदे आ और दूसरे पासे की देखदे आ इस जगत दे विच जड़ वस्तुआं दी आराधना कितने व्यापक रूप विच हो रही है चाहे किसी भी मुल्क विच चले जाओ हर पासे पत्थर ही पत्थर है तालाब ही तालाब है कोई पहाड़ां विच खोज रहा है कोई समुंदर विच खोज रहा है कोई आकाश विच विचर रहा है कोई किसी जगह यानी कि वह परमात्मा का गुण अगर किसी जगह मिल सकता है तो सिर्फ इंसानी जामे दे विच वह भी दसवें द्वार दे विच असी नौ द्वारा जी फसे उस दसवें द्वार पहुंचने की कोशिश नहीं करते अगर दसवें द्वार पहुंचांगे नहीं तो इस गुण नूं किस तरीके दे नाल प्राप्त करांगे असी संत सतगुरु कोल चले गए नाम लै लिया अमृत छक लिया हुण विचार करके देखो ये सारिया ही वस्तुआं जड़ ने ए नाम की है ए लफज नाम नहीं है ओ नाम कोई अखरी नाम नहीं है ओ महान चेतन ओ सत्ता हैगी है जड़ी उस अनामी दा एक गुण है ओ गुण किस तरीके दे नाल जड़ और चेतन नू आधार दे रहा है और किस तरीके दे नाल असी जप करके उस नू प्राप्त कर सकते हैं ना ते जप दे विच परमात्मा है ना किसी आराधना दे विच परमात्मा है उस दा एक कोई गुण है उस नू प्राप्त करन दा और ओ गुण केड़ा है प्रीत प्रेम दा गुण जिन प्रेम कियो ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਆਵਾਜ਼। ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੀਵਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੁਗਾ ਯੁਗ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਟੰਗ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਚੋਕੜੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਯੁਗਾ ਯੁਗ ਤਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਧੁਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਰਾਧ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਚਣ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਤੁਰਾਈ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੇ, ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਇਸ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਚੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਜੜ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਖਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਹਿਲ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਵਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਦ੍ਵੈਤ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਯਾਨੀ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਂਗੇ ਉਸੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਤਰੇ ਗੁਣ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅਧੀਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਤਨਾ ਗੂੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਸੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲੀ ਜਾਵਾ ਪਹਿਨਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਆਤਮਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਾਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੜ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁੱਖ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਲੰਬੀ ਮੋਟਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀ ਬੈਠੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੀਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਸਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੋਗਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਠ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਜਾਗੇਗੀ। ਇਹ ਜਗਤ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਮਲਣੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਖਾਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਲਟ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਆਇਆ, ਕੰਨ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਸੁਰਤ ਸਿਮਟਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਭਿਆਨਕ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1000 ਬਿੱਛੂ ਕਿਸੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਠਾ ਕੱਟਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਠਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਚੋਲਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਉਹ ਪਲਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੋਂਡੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਯਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਲੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜੜ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਜੜ ਵਸਤੂਆਂ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਧੁਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ। ਪਰ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੌ ਦੁਆਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਿਰਨਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਆ ਉਹ ਨਾਮ 2-4-5 ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ? ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਤਰੰਗਾਂ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਔਰ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਪ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਤਰੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਟਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਪਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੋਲੀਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਣਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸੱਚਾ ਜਪ। ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ 1-2-4-5 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਜੜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮ ਚੇਤਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਧੁਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ 100% ਝੂਠ ਹੈ। ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੁਨ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜੀਵਾ ਭਾਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਦੋ, ਉਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧੁਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਸਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਜੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਚਨ ਝੂਠੇ ਨੇ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਸਵਾਮੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਆ ਸਵਾਮੀ ਸਵਾਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਅਗਰ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਵਾਮੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਆ ਸਵਾਮੀ 'ਚ ਕਮੀ ਸੀ? ਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ 'ਚ ਕਮੀ ਸੀ? ਕਿਆ ਨਾਮ 'ਚ ਕਮੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਕਮੀ ਜਪਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਮੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸੀ, ਨਾ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਮਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਮਿਟਾਈ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੜ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਔਰ ਧੁਨ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ 100% ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਯਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਚਤੁਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਾਲ ਚਤੁਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਹਾਂਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਚਤੁਰਾਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ, ਜੜ ਚੇਤਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਆਕਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਠਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ मैं अविनाशी नूं प्राप्त करना चाहती हां, उस परमात्मा नूं प्राप्त करना चाहती हां, तो चाहे उस परमात्मा नूं बच्चे दे रूप च देखे, चाहे जड़ चेतन आधार किसी रूप दे विच देखे, पर असली गल यह है कि प्रेम दे नाल अपने अंतर की सफाई कर रही है। परमात्मा क्या है विचार करके देखो, वह सुची और उची दात, वह गुण के जरिए सब जगह व्याप्त है। यह गुण साडे अंदर मौजूद है, हर पल हर कड़ी यह अमृत तारा दसवें द्वार हो रही है। क्या किसी ने दीदार किया अज तक? अज तक दीदार नहीं किया। तो क्या यह झूठ है कि परमात्मा हरेक के अंदर मौजूद है? नहीं, यह झूठ नहीं है, यह 100% सच है। वह सच कदों है? जदो अंतर की सफाई हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सचो सच वस्तु है, यह निर्मल और चेतन साफ वस्तु है, और निर्मल और चेतन साफ वस्तु सिर्फ साफ और सुचे भांडे के विच ही प्रगट होंदी है। इस शब्द की इस गुण की अपनी मर्यादा है, और जब तक यह जीवात्मा उस मर्यादा के अधीन नहीं आएगी, कदे भी 100 गुरु का नाप लाप लो, 100 नाम लै लो, जितने मर्जी कर्म कांड कर लो, ये सारियां मन दिया चतुराइया ने कदी भी जीवात्मा चाह करके भी इस प्रमाण चो निकल नहीं सकती। ना आज तक निकल सकी है, ना कदी निकल सकेगी। अगर इस चतुराई चो निकलेगी तो सिर्फ सतगुरु की शरण लै करके निकलेगी, और अंतर की सफाई करके। वह सफाई किस तरीके नाल हो सकती है? 10 कर्म इंद्रिया ने, 5 कर्म इंद्रिया ने, 5 ज्ञान इंद्रिया ने, उस तो पर मन बुद्धि चित और अहंकार ने, यह 14 वस्तुआं की सफाई। सफाई का की भाव है? इन्हों का निश्चल होना। कदी विचार करके देखो, असी नाम का अहंकार पढ़ते हैं, अमृत का अहंकार पढ़ते हैं, किसी ने एक भी इंद्री नूं शांत करन दी कोशिश की है? असी तो दिन रात इन्हां नूं पड़कान च लगे हुए हैं, ये बालन कट्ठा कर रहे हैं। विचार करके देखो, ये मन विषय विकारां दी अग विच दिन रात जल रहा है, और असी सिर्फ उहदे विच बालन पा रहे हैं। इस जगत दे विच इक लालच, इक लोभ, इक अवगुण है इस मन का। हुण लालच नूं कदी असी मिटाण दी कोशिश कीती? कदी संतोष दा गुण अंदर पैदा करन दी कोशिश कीती? कदी भी नहीं। असी इस लाभ नूं पाण वास्ते इस जगत दे विच होर वड्डे वड्डे काम करदे हां, ऐसे भयानक कर्म करदे हां कि अपने गुरु भैणा भरावां दे ही हक लिया के कर खा लैंदे हां। उसनूं की कहा जाता है? एक पासे असी अहंकार भरदे हां, एक मत चलाता, एक धर्म चलाता कि असी अंडा मीट शराब नहीं पींदे। हुण विचार करके देखो, बड़ी सुंदर गल है कि असी अंडा मीट शराब का सेवन नहीं करते। बहुत सारे कर्मां तो बच गए, बहुत सारिया होर गल्लां तो भी बच गए। इस जीवात्मा का बहुत सारा भला भी हो गया, बहुत सारा भलिया होने के बाद भी यह कैदी रही और कई तरीके के कर्म करती रही। क्यों? क्योंकि घर आ करके जड़े असी लोगों का हक मारिया सी ना, हक पराई नानका उस सूअर उस गाय, गुरु पेर हामा ता भरे जे मुड़दार ना खाई। असी तो मुड़दे कट कट के खा रहे हैं। हुण मुड़दे क्या निचली जूना सिर्फ जानवर और परिंदे ही ने? क्या हक की हैगा? हक उस ओ है जड़ा असी अपने भैणा भरावां दा और इस जगत दे विच कम धंधा करन वक्त लोगां दा मार करके कर ले आंदे आ, और घर ते टेबल ते बैठ के संबंधी और परिवार दे जितने प्यारे ने, धियां पुत्तर मां प्यो सारे मिल करके जदों खांदे ने, ए इंसान दा मास और इंसान दा खून है। और विचार करके देख लो, ये जितने भी जप असी जप रहे हैं, ये कदे सानू पार लैके नहीं जाणगे। जब तक ये खून पीना बंद नहीं करांगे, ये मांस नूं त्याग नहीं करांगे, तब तक अंडा मीट शराब भी सानू बचा के नहीं ले जा सकता। बहुत सारे कर्म बच गए, पर बहुत सारे असी बना भी ले। हुण विचार करके देखो कि असी इस जगत की रचना तो किस तरीके नाल निकल सकते हैं। अगर ये वस्तुआं भी जड़ ने, तो उसके बाद असी किस तरीके नाल इसका उद्धार कर सकते हैं? जब तक असी ये सारी मन की सफाई नहीं करते, वो एक ज्ञानेंद्री है, केड़ी अख, अख दे जरिए असी किस भयानक और सूक्ष्म रूप दे विच इस जगत दे विच भ्रमण करते हुए कर्म बनाते हैं। सतगुरु इसका सिर्फ एक इशारा करते ने, निमक घड़ी काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे, एक घड़ी रस मांडे फिर बहुत बहुत पछतावे। साध संगत जी, बहुत बहुत पछतावे का पता की भाव है? जिसले आखिरी समय अख बंद होंदी है ना, उस वेले की होंदा? यमदूत आ करके वाला तो पकड़ के घसीड़ के ले जाते हैं। उस वेले सिर्फ पछताना बाकी रह जाता, हथ मलने बाकी रह जाते हैं, पर उसले कोई उपाय नहीं चलता, कोई कम नहीं चलता, कोई साडा हुदम जो है किसी कम नहीं आता। क्यों? क्योंकि जींदे जी असी कदे भी एक कर्मा नूं बनाना बंद नहीं किया। सेवा करत ओ निष्कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, ओ अथत गुणा दा स्वामी, ओ परमात्मा, ओ जिस गुण दे रूप विच मौजूद है, उस गुण नूं असी सिर्फ और सिर्फ ए सारे निष्कामता दी सेवा, अपने सतगुरु दी सेवा करके उस नूं प्राप्त कर सकदे आं। हुण सतगुरु दी सेवा सिर्फ हत्थां पैरां दे नाल नहीं होंदी। हुण जिहड़ियां सत समुंदर पार बैठियां ने, ओ ते सतगुरु दे दीदार तक नहीं कर सकदियां। कितनियां तरसदियां सन ओ जीवात्मा बाबा सावन सिंह जी दे टाइम दे विच, किस तरीके दे नाल असीं अपने गुरु दा दीदार कर सकीए। ते गुरुआ जी ने रहमत करके उन्हां नूं अपना आकार भेजिया, एक फोटो भेजी, और उस नूं काल ने किस चतुराई दे नाल इस जगत दे विच उन्हां दे अपने घर दे विच ही किस तरीके दे नाल उन्हां दे स्टालां ते आकार दित्ते जा रहे ने। क्या उन्होंने यह सानू सिखाया सी कि जड़ वस्तुआं नू असी पूजना हैगा, उन्हां दी आराधना करनी है। संता दी वाणी विचार करके देखो स्वामी जी ने कहा पाठ पढ़ाया सी, किस रस्ते तो सानू चलाया सी। अज असी उन्हां दी कबर बना करके उन्हां नू धूप बत्ती देंदे आं, उन्हां दी फोटोआं कार्च लगा करके उन्हां दी धूप बत्ती देंदे आं, और इन्हां जड़ वस्तुआं नू पूज करके जप करके असी यह सोच के अहंकार च बैठे आं कि असी तो सतगुरु पर अहंकार एक आसान करके आ गए हैं कि असी नाम ले लिया है, असी अमृत छक लिया, बाकी काम सतगुरु दा है। आपे करण करावन हार, साध संगत जी बड़ा उच्चा विचार है आपे करण करावन हार दा। साध संगत जी आज तक किसी नु समझ नहीं आया, असी मन दी चतुराई दे विच इहदे अधूरे हाथ कढ़ के आज तक हाथ ते हाथ धरे बैठे हैं, किस करके कि अपने आप ही सानू जपा लेगा और पार लै जाएगा। हुण विचार करके देखो उसने सानू मनुखा जन्म किस वास्ते दिता सी, उस परमात्मा की आराधना वास्ते दिता सी, जपण वास्ते दिता सी, अपने अंदर की सफाई करने वास्ते दिता सी कि या जगत की भोग वास्ते वस्तुआं कठियां करने वास्ते दिता सी। कदे ए तुक सानू उसले समझ नहीं आई, ए मनुखा जन्म कितना कीमती है, 84 लाख जामे की क्या गल करनी है। इस मनुखे जन्म दे विच भी देखो जिन्हां दे हाथ पैर नहीं ने या अपंग ने किसे तरीके दे नाल, ए दिमाग नहीं है, ते साडे घर वाले ही सानू ले जा करके जेल दे विच कैद करा दिंदे ने। क्यों? क्योंकि कहंदे ने जी ए पागल हो गया, इहदा दिमाग काम नहीं करदा, ए मनुष्यता वास्ते हानिकारक है। हुण विचार करके देखो हथ पैर मौजूद ने, दिमाग मौजूद ने, पूरा शरीर है, कार बार संपदा सब कुछ सतगुरु ने दिती है, उसके बाद केड़ी तुक लैके बैठे हैं, आपे करण करावन हार। साध संगत जी मन की बड़ी चतुराई है, उस चतुर ने बड़ी चतुराई दे नाल इस जीवात्मा नू ठग लिया है। ये सारे ऋषि मुनि देवता ठगे गए, असी भी ठगे जा रहे हैं, दिन रात हर पल हर कड़ी ठगे जा रहे हैं, और अगे भी साडा यही हाल होना है अगर जब तक असी सतगुरु की शरण दे विच नहीं आंगे। तो किस तरीके दे नाल असी इस चतुराई चो निकल सकते हैं, किस तरीके दे नाल अख दे नाले जो कर्म बन रहे ने किस तरीके दे नाल निकल सकते हैं। एक निमक कड़ी काम स्वाद कारण, निमक कड़ी का क्या भाव है कि पलक चपकते ही निमक कड़ी खत्म हो जाती है, और इन अखा दे नाल अगर असी किसी जीवात्मा नू यानी कि मनुखे जन्म दे विच काम वासना दे नाल दृष्टि दे नाल देखा है, ते विचार करके देखो अजे ते दृष्टि विचार रही होंदी है, रूप नू निहार रही होंदी है, मन उस तो पहले भोग कर चुका होंदा है, मानसिक रूप नाल कीता गया जिहड़ा निमक कड़ी का भोग है। 36,000 साल एक ऐसा नरक है जिस दे विच तपदे खंभा दे नाल इस जीवात्मा नू चिपकाया जांदा है। निमक कड़ी दी जो रचना है 36,000 साल है, ते अगर 50 साल असी इना अखा दे नाल इस जगत दे विच काम दृष्टि दे नाल इस जगत नू देखिया है, ते विचार करके देखो कितने करोड़ अरब युग दे बाद इस जीवात्मा नू निचली दुनिया दे विच जन्म मिलेगा। मत कोई समझे कि नरका दे बाद सीधा सानू मनुखी जून मिल जाएगी, उत्तम भोगी जूना जेड़ी स्वर्ग वैकुंठा देवी देवी देवते ने अच्छे कर्म करन दे बाद प्राप्त हुंदी है, ओही इस जगत विच आ करके मनुखे जन्म दे अधिकारी हुंदे ने। उस दे बाद दूसरे जेड़े नरक ने या निचली जूना ने उन्हां दा ते कुछ कहना ही नहीं है, ये वनस्पति दे विच भी जीवात्मा मौजूद है। हुण विचार करके देखो जिन्हां वनस्पतियां नू असी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वह मास नहीं है, क्या वह खून नहीं है, यानी कि इस जगत दे विच अंधकार ही अंधकार है। बड़ी चतुराई दे नाल इस अंधकार नू एक सूरज दे करके प्रकाश दा दर्जा दे, सूरज दी रोशनी दे विच उस प्रकाश नू जो कि सच्चा प्रकाश है सचखंड तो आंदा है, उन्हां किरणा दा असी कदे दीदार भी नहीं कर सकते। ये कदों संभव है? जदों असी अपने सतगुर दे प्रकाश नू प्राप्त करिए। हुण सतगुर दा प्रकाश किस तरीके नाल प्राप्त हो सकता है इस जगत दे विच, जिस तरीके दे नाल ए प्रकाश और आवाज दा गुण जड़ और चेतन नू आधार दे रहा है, और जद तक जीवात्मा उस जगह पहुंच करके इस प्रकाश और उस आवाज नू प्राप्त नहीं कर लैंदी, तद तक वह कदे भी उस परमात्मा नू प्राप्त नहीं कर सकती। हुण विचार करके देखो असी जितने भी इस जगत दे विच आराधना करदे हां, जितने भी पूजा करदे हां, जितने भी जप तप करदे हां, जितने भी असी शरण लईए, क्या यह सच्ची शरण है, क्या यह साडा मरण दे बाद उद्धार कर सकदे ने? ये सारे मजबून जड़े सोचण और विचार करन वाले ने। ये मनुखा जन्म बहुत कीमती है, इस घड़ियां जड़ियां निकल गईयां ये दुबारा ना किसी नू मिलियां ने ना कदी मिलणगियां। एक बारी अख बंद हो गई तो फिर इस दी पहल कौन करेगा? ये बड़ा सोचण और विचार करन दा मजबून है। जड़ी कीमती दौलत है असी इस जगत नू भोगदे होए हसदे खेडदे किस तरीके दे नाल ये सारी पूंजी जड़ी है व्यर्थ गवा देने आ, और जिसले आखिरी समा आंदा है उसले साडे जोगा रोना पिटना और सिर्फ अभाव रह जांदा है, और इस अभाव नू लै करके इस जीवात्मा नू फिर 84 लाख पिंजरे दे विच भ्रमण करना पैंदा है। तो साध संगत जी ये अज दा जो मजबून सी सतगुरां ने चतुराई दे जरिए बड़े तरीके दे नाल स्पष्ट कीता है, ये सचखंड तो जो किरणा सानू मिलियां ने और लफ्जां दे रूप दे वी साडे कन्नां दे नाल टकराईयां ने, बड़े कीमती लफज ने, ये लफजां दा तां ही फायदा है, ये किरणा दा तां ही फायदा है जे असी इस नू अमली जामा पहनाईए। अगर इस दे उपर असी अमल ना कर सके ते 1, 2, 4 नहीं पूरे 100 सतगुरु होवन और पूरे 100 सतगुरां को नाम लिया होवे, ये सिर्फ होंबा और अहंकार है। इन्हां नूं जप के आज तक कोई पार ना जा सकया है, ना कदी जाएगा। जड़ी जीवात्मा ने अंतर दे विच इन्हां नूं जप करके प्रकाश दा दीदार किया है, वह धुन सुनी है, तो कन्ना चंगूठे दे करके नहीं सुनी, और ना इस जप नूं जप करके सुनी है, वह उन्होंने सुनी है तो अपने सतगुर की प्रसन्नता प्रेम दे नाल सुनी है। अगर साडे अंदर प्रेम नहीं है तो असि सतगुर की प्रसन्नता हासिल नहीं कर सकते, और अगर सतगुर की प्रसन्नता हासिल नहीं कर सके तो जितने मर्जी गुरुआं की शरण असि लै लीए, यह सारी झूठी शरण है, मौखिक शरण है, और मौखिक शरण के नाल असि उस तकनीकी वस्तु, उस परमात्मा की आवाज जो हक की आवाज है और प्रकाश, उस नूं प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक जीवात्मा इस तकनीकी रूप यानी उस विशाल अथाक समुंदर का जो गुण है, उस गुण दे विच लीन नहीं होंदी, तद तक वो परमात्मा नूं प्राप्त करके आवागमन तो मुक्त नहीं हो सकती। इसी करके यही वजह है कि इस सृष्टि नूं रचिया हजारा करोड़ा युग अनगिनत समा हो गया, अज तक यह जीवात्मा अपने आप नूं जन्म मरण तो कढ नहीं सकी। उसकी इको ही एक वजह है कि इन्हें कदे भी उस परमात्मा नूं ठीक तरीके दे नाल प्राप्त करने की जो विधि है उस नूं अपनाया नहीं। असी कोई पहली बारी संतां दी शरण च नहीं गए, जद दी सृष्टि है संत भी आए ने और संत है ने, और अगर असी जन्म लिया है मां दे पेट चो लिया है, जद मां दे पेट चो गर्भ जून दे विच पुठे लटके सी उसले भी सतगुरु ने साडी संभाल कीती सी। जदों संभाल कीती सी क्या वो नाम नहीं सी? क्या यह मनुखा जन्म जदों दिता गया वह नाम नहीं सी? यह सारा का सारा नाम सीगा। असी आखरी नाम दे विच फस चुके हैं, यानी कि एक कार नूं बदल के दूसरा दल बदल लिया। कदी दल बदलन दे नाल परमात्मा नहीं हुंदी। संतां ने जो रस्ता दिता जिथे है वो उथे ही रहो, इन्हां कर्म कांडा तो बच नहीं सकदे, पर ठीक विधि नूं अपनाओ, अपने अंतर की सफाई करो। जब तक अंतर की सफाई नहीं करांगे उस परमात्मा दे सच्चे और साफ गुण नूं प्राप्त नहीं कर सकते, और जब तक इस गुण सानूं प्राप्त नहीं होगा साडे अंदरों मैल नहीं निकलेगी, असीं कदे भी इस जीवात्मा का उद्धार नहीं कर सकते, यानी आवागमन तो मुक्त नहीं हो सकते। सतसंगत जी, अज दे इस रूहानी सत्संग भी गुरु साहबा ने चतुराई जो है ये मन दी है, और बड़े तरीके दे नाल समझाया है कि इस चतुराई दे विच्चों असी उस महा चतुराई दे नाल जो कि सतगुरु लै करके आंदे ने उन्हां दी वध समर्था हुंदी है, इस समर्था चो सानू कढ सकदे ने। और इस बाद जो भी बाणी लई जांदी है उहदे विच जो भी तुकां लईआं जांदियां ने, इह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप दे विच किसी ना किसी देश, जात, मजहब, कौम या किसी विशेष मत दे नाल संबंध रखते ने। इत्थे ना ते कोई धर्म चलाने वास्ते असी इकट्ठे हुंदे आ, ना किसी दी निंदिया या वडियाई करन वास्ते। ए बड़ा सोचण, समझण और विचार करन दा मजबून है, और इहदे विच गुरु साहब जो वाणी लैंदे ने उन्हां दा अर्थ ज्यादा देण दी कोशिश करदे ने, ना कि तुकां उचारण दी कोशिश करदे ने। अगर इह तुकां राग दे विच उचारियां जाणगियां, जिस तरह कि असी इत्थे पहले टेप लगा दिंदे आ रागां दे विच, क्या इह राग किसी नूं समझ आए ने? अज तक किसी नूं समझ नहीं आए। कोई उस रागनी दे विच मस्त होएगा, उस राग तक पहुंचेगा तो इस राग नूं जान सकदा है। बड़े उच्चे राग ने, इस करके सतगुरु जी ने ज्यादा जोर दिंदे ने साधारण लफ्जा दा कि हर मनुख नूं, हर जीवात्मा नूं इसका अर्थ जो है समझ आ सके। तो मत कोई यह समझे कि इहदे विच जो तुकां ने वो शलोक दे रूप नहीं लईआं गईआं ते इह कोई वाणी नहीं है। यह वाणी सारी सचखंड दी है, सारी ताकत समर्था सचखंड दी है, और बड़े साधारण लफ्जा दे विच सतगुरु साडी चोलियां विच तकसीम करदे ने। ते साडा वी फर्ज यह है कि असीं इस नूं अभाव दे तरीके दे नाल ना देखिए। तो सतगुरां दा जो भाव हुंदा है सिर्फ इतना हुंदा है कि वह इस पहलू नूं समझा सकन अच्छे तरीके दे नाल। इस तों अगे उहनां दा कोई भी भाव नहीं हुंदा। कोई भी माई भाई अगे वध के कोई होर अर्थ इन्हां तुकां दा इस वाणी दा कढदा है ते उसदी अपनी मनमत है। गुरमत दा इस दे नाल कोई भी संबंध नहीं है।